الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور آیات نمبر 15، 16، 17 اور 18 کا ہم پچھلی کلاس میں ترجمہ پڑھ چکے تھے، اور ان کی خلاصہ تفسیر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر چکے تھے. تو خلاصہ تفسیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں سے حضرت مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ نے لی ہے، اور اس کا اسلوب یا اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر لائنڈ الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ایگزیکٹ ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر جو بریکٹس میں الفاظ ہوتے ہیں وہ مختصر تفسیر ہوتی ہے، یعنی وہ اصل میں بیان القرآن تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک طرح سے فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی ہم ایک دفعہ ترجمہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر خلاصہ تفسیر میں ترجمہ بھی دوبارہ سے ریپیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی تھوڑی سی جو ہے وہ تفسیر اور اس کے اوپر تھوڑی بات بھی ہو جاتی ہے. تو ہم نے اتنا پڑھ لیا تھا، تھوڑا سا ہی، 4-5، خیال میں 6 لائنیں پڑھی تھیں. تو ہم دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں، شروع سے، کہ فرمایا اے اہل کتاب یا اہل الکتابی، یعنی یہود و نصارہ. اہل کتاب سے مراد قرآن مجید میں یہودی اور نصرانی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ سارے جو ادیان ہیں دنیا کے اندر، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شروع میں دین اسلام ہی تھے، لیکن پھر بعد میں شیطان نے ان ادیان کو مسخ کر دیا، لوگوں سے مسخ کروا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کوئی دین جو ہے وہ ہندو مت کی شکل اختیار کر گیا، کوئی بدھ مت کی شکل اختیار کر گیا، کوئی کسی اور دین کی شکل اختیار کر گیا. تو وہ جو مسخ ہوئے وہ بہت زیادہ مسخ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ان میں صحیح باتیں بہت ہی تھوڑی سی رہ گئیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ مسخ ہو گئیں. لیکن جو یہود و نصارہ والا دین ہے، تو یہ نسبتاً دوسرے ادیان کے مقابلے میں ان کے اندر چیزیں کم مسخ ہوئیں. مسخ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ دینا، خراب کر دینا، چینج کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہود و نصارہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام کی مسخ شدہ شکل ہی ہے، لیکن دوسرے ادیان کے مقابلے میں کم. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا، باقیوں کے لیے نہیں کیا. تو اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ تمام انسانوں کے لیے اور تمام علاقوں کے لیے، حتیٰ کہ تمام زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے نا، نبی بنا کے بھیجے گئے. تو یہود و نصارہ کی طرف بھی بھیجے گئے، بنی اسرائیل کی طرف بھی، اور دوسرے اقوام کی طرف بھی، عرب کی طرف بھی. اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس، قد جاءکم، ٹھیک ہے، تو صرف عربوں کے پاس نہیں بھیجے گئے، بلکہ یہود و نصارہ کے پاس بھی بھیجے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، کہ جن کے کمال علمی کا تو یہ حال ہے کہ کتاب کے مضامین سے، یعنی تمہاری جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، ان کے مضامین میں سے جن چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو، ان میں سے بہت سی باتوں کو جن کے اظہار میں کوئی شرعی مصلحت ہو، ظاہراً تحصیل علوم نہ فرمانے کے باوجود خالص وحی کے ذریعے واقف ہو کر تمہارے سامنے صاف صاف کھول دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی، کہ دنیاوی اسباب جو ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے، ठीक है, जो मीन्स होते हैं ना दुनिया में इल्म हासिल करने के, क्या मीन्स होते हैं, या तो कोई टीचर होता है, ठीक है, इंसानी शक्ल में कोई टीचर होता है, या जो है वो कोई किताब होती है, जो किताब भी इंसान की लिखी हुई किताब होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना तो किसी इंसानी टीचर से इल्म हासिल किया और ना किसी किताब को पढ़ करके इल्म हासिल किया। तो यही जाहिरी तहसील उलूम के जराए होते हैं, तो आप सल्लम को उनमें से कोई भी नहीं मिले। लेकिन फिर कैसे इल्म हासिल हुआ, वही के जरिए से, रेवलेशन के जरिए से इल्म हासिल हुआ। ठीक है, तो अब जब ये हासिल हुआ तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो अहले किताब के सामने उनकी जो छुपाने वाली छुपाई हुई बातें थी ना, तो उनको साफ साफ खोल दिया, बता दिया उनको कि भाई असल में तो ये है, असल में तो ये है, लेकिन हर चीज नहीं बताई। तो आगे फरमाते हैं कि कमाल इल्मी व इखलाकी का ये आलम है कि जिन चीजों को तुमने छुपा लिया था, उनमें से बहुत से उमूर को जानने और बाखबर होने के बावजूद अखलाकन उनके इजहार से दरगुजर फरमाते हैं। ठीक है, यानी याफू अन कसीर का मतलब क्या, कि बहुत सी चीजों को ना नबी अलैहिस्सलाम नहीं भी बयान फरमाते हैं। ठीक है, तो याफू का एक मतलब जो है वो नजरअंदाज कर देना भी है, या याफू का एक मतलब जो है वो यहाँ पर जैसे है कि जैसे इस्तेमाल हुआ है कि तुम्हारी इन गलतियों को, जो तुमने गुनाह किए हैं ना अपने किताब की बातों को छुपाने के, तो कुछ को जो है वो दरगुजर कर देते हैं, जैसे इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज उनको बयान करने की जो है वो नीड नहीं थी। ठीक है, तो एक एक चीज को पिन पॉइंट नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम ने। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर में लफ्ज़ अखलाकन जो इस्तेमाल किया, तो उसकी हमने कुछ तफसील पिछली क्लास में बयान करी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अकल से ये फैसला नहीं किया कि फलानी चीज़ बता देना जो है वो अखलाकी तौर पर अच्छा है, तो इस वजह से वो बता दी, और जो चीज़ें अखलाकी तौर पर बुरी थी तो उनको नहीं बताया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये फैसला अपनी अकल की बुनियाद पर नहीं किया, बल्कि ये फैसला भी अल्लाह के हुक्म की ही बुनियाद पर किया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि क्या है, सूरह नजम की आयत है, जहन में बिल्कुल नहीं आ रही, कि वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि आप जो कुछ भी बयान फरमाते हैं ना, नुतुक, नुतुक कहते हैं वर्बलाइज करने को, जुबान से अदा करने को, तो मा यंतिकु अनिल हवा, अपनी पर्सनल ख्वाहिश या अपनी पर्सनल डिसीशन की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि के अल्लाह ताला की वही पर ही आप सरम करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर ही करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया वो बयान कर दिया, जिसका हुक्म नहीं दिया वो बयान नहीं किया, और यही आप सरसम के अफ़ाल व आमाल जो हैं ये अखलाक बन गए। इस वजह से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इसके लिए अखलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा आगे फरमाते हैं कि जबकि उनके इजहार में कोई शरी मसलहत ना हो, सिर्फ तुम्हारी रुसवाई ही होती हो। ठीक है, यानी आप सरसम से जो नबी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें कहलवाई, तो उनका भी एक मकसद था, उससे इंसानों को फायदा होता था वो बातें कहलवा देने से, और जिन चीजों के कहलवा देने से इंसानों को फायदा नहीं होता था, तो उनको सिर्फ जो है वो किसी को जलील और रुसवा करने की नीयत से नहीं, बल्कि कोई शरी मसलहत होगी, फायदा होगा तभी कहलवाई, वरना नहीं कहलवाई। ठीक है, और ये कमाल इल्मी कमाल इल्मी दलील नबूवत है। ठीक है, तो ये जो कमाल इल्म है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीजें भी पता जो कि अहले किताब लोगों से छुपाते थे, ये नबी अलैहि सलाम की नबुवत की दलीलों में से एक दलील है। ठीक है, ये नबुवत का मतलब क्या, कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है, यही मतलब है ना नबुवत का। ठीक है, तो वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम हासिल हुए, दूसरों को तो वही के जरिए से उलूम हासिल नहीं होते। ठीक है, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील हो गई। बाकी लोगों को तो दूसरे जराए से इल्म हासिल होता है ना, नबी अलैहिस्सलाम को तो दूसरे जराए से इल्म हासिल ही नहीं हुआ, तो ये दलील नबूवत हो गई। और कमाल अखलाकी इसका मुअय्यद और मुअक्कद है, यानी एक तो ये कमाल इल्मी दलील नबूवत है और कमाल अखलाकी उसका मुअय्यद और मुअक्कद है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जो आला अखलाक हैं कि अपना जाती बुग़्ज़ और कोई जाती दुश्मनी निकालने के लिए कोई भी काम नहीं किया, ये कमाल अखलाक होते हैं। ठीक है, अखलाक का कमाल, तो इससे जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत मजीद मुअय्यद हो गई और मुअक्कद हो गई, यानी मजीद एम्फेसाइज्ड हो गई। ठीक है, ताईद भी मिल गई और ताकीद भी मिल गई। मुअय्यद यानी जिस चीज की ताईद हो, ठीक है, ताईद का मतलब क्या होता है, मुश्किल अल्फाज है ना उर्दू के, अब तो मैं इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती, तो ताईद का मतलब क्या होता है कि जिसकी जो है वो कंकरेंस हो अंग्रेजी के अंदर, अब ये भी जरा मुश्किल अंग्रेजी है, यानी जिसकी जो है वो एक्सेप्टेंस हो, ताईद की जाए किसी चीज की, यानी आप किसी चीज को जो है वो तालियां बजा करके ताईद करते हैं ना, हाँ वाकई हम इससे एग्री करते हैं, एग्रीमेंट हो। ठीक है, तो एग्रीमेंट भी हो गई और जो है वो एम्फेसिस भी हो गया, आला अखलाक। ठीक है, तो नबूवत के जो दलाइल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दो। नंबर वन, कमाल इल्म, इल्म कमाल के दर्जे पर हो, और नंबर टू, कमाल अखलाक, यानी अखलाक भी बेहतरीन हो। ये नबुवत की दलीलें हैं। और जो नबुवत का काम करने वाले लोग होते हैं, यानी जो नबियों के वुरसा होते हैं, नबियों के जो इनहेरिटर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो जाहिर है कि वो नबुवत का जब काम कर रहे हैं तो उनको भी इन्हीं दो औसाफ से मुत्तसिफ होना चाहिए, इन्हीं दो औसाफ से, यानी उनके पास भी इल्म होना चाहिए और उनके पास भी आला अखलाक होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, ठीक है, उनके पास कमाले इल्म और कमाले अखलाक तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो नबी के लिए खास है ना। ठीक है, इतने बेहतरीन अखलाक और इतने बेहतरीन इल्म तो सिर्फ नबी के पास हो सकता है, लेकिन कम अज कम ये दोनों चीजें किसी ना किसी अच्छे दर्जे तक तो होनी चाहिए ना, कमाले इल्म और यानी इल्म और अखलाक। ठीक है, बद अखलाकी के साथ तो नबुवत वाला काम नहीं हो सकता, और उसी तरह जहालत के साथ तो नबुवत वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मुअजजात के अलावा खुद तुम्हारे साथ आपका ये बर्ताव आपकी नबुवत साबित करने के लिए काफी है। ठीक है, यानी एक तो मुअजजा और दूसरा बर्ताव। यहाँ पे मुआवजा कौन से वाले मुआवजे की बात हो रही है, अगर आपसे पूछें जस्ट टू चेक कि भाई आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस डिस्कशन को, तो यहाँ पर पीछे तो कमाल इल्मी और कमाल अखलाकी की बात हो रही थी, अब एकदम से इन्होंने जो है वो मुआवजे का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो कौन सा वाला मुआवजा यहाँ पे, तो नबी अलैहिस्सलाम का कोई मुआवजा बयान किया गया?
अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो उनको इल्म हासिल हुआ वही के जरिए।
जी ठीक है, बिल्कुल सही जवाब तो आपने दिया, लेकिन शायद आप नए हैं हमारी इस क्लास के अंदर, तो इस वजह से आपको ही नहीं मालूम होगा कि इसमें ना फिर वो जवाब देने का फॉर्मेट जो है वो सिर्फ चैट विंडो के ऊपर लिख करके है। ठीक है, क्योंकि ये इस क्लास में काफी लोग होते हैं ना, अब सब अपना अगर अनम्यूट करके बोलेंगे तो फिर वो एक केओस क्रिएट होने का बहुत इस्तेमाल होता है। जजाकुम अल्लाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये हो गया कि मौजजा जो है ना वो उसी चीज को ही कहते हैं कि जो के असबाब के बगैर हो जाए। ठीक है, वर्ल्डली मींस के बगैर कोई चीज हो जाए, अगर वो किसी नबी के साथ होए तो उसको मौजजा कहते हैं। तो भाई इल्म के मींस क्या है, इल्म के असबाब क्या है, टीचर और बुक। नबी अलैहिस्सलाम हैड नीदर ऑफ देम, इस वजह से कमाल इल्मी नबी अलैहिस्सलाम की है, ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजजा है। ठीक है, कमाल इल्मी। अब कुरान जो है वो इसका पार्ट है, जैसे आपने जवाब दिया ना कुरान, तो कुरान इज पार्ट ऑफ दैट मोजज़ा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीसें हैं जो कि कुरान तो नहीं कहलाती, ठीक है, वो भी तो इसी का हिस्सा है ना, कमाल इल्मी का, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीसों में भी तो बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, फ्यूचर के बारे में भी बताई, पास्ट के बारे में भी बताई, और यानी सही गलत के बारे में वगैरह, तो दोनों, तो वही वही के अंदर कुरान और हदीस दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मौजा, इस वजह से यहाँ पे लफ्ज मौजा इस्तेमाल किया कि ये भाई तो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित करने के लिए काफी है। तो ये किन लोगों के लिए काफी था? जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों के लिए बिल्कुल एक यानी पहली दफा गोया के चीज करने वाले लोग थे ना। हमारे लिए ये चीज उस शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में उन लोगों के लिए थी, ठीक है। तो नबुवत के दलाइल, नबुवत के मौजजात हमारे पास तो फिर ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड और ऑलरेडी एक्सेप्टेड फॉर्म में पहुंचे हैं ना। सहाबा ने एक्सेप्ट कर लिया, सहाबा ने इसको जो है वो एडॉप्ट कर लिया, और दुनिया के अंदर, इस दुनिया के सामने इसको जो है वो खोल खोल के जो है वो इसको प्रूफ कर दिया। तो अब हमारे लिए तो गोया के काफी हद तक इसको कहा जाएगा पका पकाया हलवा, ठीक है। तो हमारे लिए तो सारी चीजें हो चुकी हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये गोया के एक नई चीज थी ना। 500 साल तकरीबन गुजर चुके थे आखिरी नबी को आए हुए इस दुनिया में, तो उनके लिए फिर इस तरह से अल्लाह ताला ने नबूवत को साबित किया मोजजात के जरिए से, ठीक है। तो अखलाकी मोजजात भी थे और इल्मी मोजजात भी थे नबी अलैहिस्सलाम के, हमें इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए चीजें ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, दुनिया के अंदर एक्सेप्ट और राइज हो चुकी हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि और इसी रसूल के जरिए तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशन चीज आई है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। एक रोशन चीज आई है और वो एक वाज़ह किताब, किताब वाज़ह है कि उसके जरिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रज़ाए हक के तालिब हों सलामती की राहें बताते हैं, रज़ाए हक के तालिब, यहदी बिहिल्लाहु, ठीक है, हिदायत देते हैं अल्लाह ताला उसके जरिए से, किसके जरिए से, नूरुन व किताबुन मुबीन के जरिए से, किसको, मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलामी, जो कि अल्लाह की जो पसंदीदा रास्ता है सुबुल सलाम, ठीक है, तो अल्लाह की रजा की इत्तबा करते हैं, अल्लाह की रजा की इत्तबा करते हैं, सुबह सलाम, सलामती की राहें, ठीक है, तो उनको सलामती की राहों की तरफ अल्लाह ताला हिदायत देते हैं, जो रजाए हक के तालिब हो सलामती की राहें बतलाते हैं, यानी जन्नत में जाने के तरीके, जो खास अकायद व आमाल हैं तालीम फरमाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह की रजा क्या बताई थी कि कोई अगर आप में से ये बता ये बता सके कि रिजवानहू के बारे में पिछली क्लास में एक बात हुई थी, इत्तबा रिजवानहू, ये इसको क्या क्या कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इत्तबा रिजवानहू कि वो इसके जरिए से हिदायत देते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देते हैं इसके जरिए से, किताब मुबीन के जरिए से, किसको हिदायत देते हैं, जो कि अल्लाह ताला की रजा की इत्तबा करता है। तो अल्लाह ताला की रजा है क्या, अल्लाह ताला की रजा की इत्तबा करते हैं, अल्लाह ताला की के डिजायर को परसू करते हैं, अल्लाह ताला के डिजायर को फॉलो करते हैं, उनको हिदायत मिलती है। तो भाई अल्लाह ताला की डिजायर है क्या, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, या अगर आप थोड़ा और आसान तरीके से कहें कि भाई हमारे लिए इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या रेलेवेंस है हमारे लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, उन पर ईमान लाना, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, रसूल के इत्तबा, ठीक है, चले। तो अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की रजा जो है ना, वो यहाँ पे असल में कहना ये चाह रहा हूं मैं, कि अल्लाह ताला तो सबका अल्लाह है कि नहीं है? ठीक है, अल्लाह ताला तो सबका है, ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का खुदा है और अल्लाह ताला जो है वो अबू जहल का खुदा नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो अबू लहब का खुदा नहीं था, ठीक है, और अल्लाह ताला जो है वो वलीद का खुदा नहीं था, और अल्लाह ताला जो है वो उमैया बिन खलफ का खुदा नहीं था। क्या अल्लाह ताला सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का खुदा था? भाई अल्लाह ताला तो कुरैश के हर हर शख्स का खुदा था ना, अल्लाह ताला तो हर यहूदी का भी खुदा है, अल्लाह ताला तो हर ईसाई का भी खुदा है, अल्लाह ताला तो हर हिंदू का भी खुदा है, ठीक है। तो जब सबका अल्लाह और सबका यानी खालिक और सबका राजिक और सबका मालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए सब कहें कि भाई आई विल फिगर इट आउट ऑन माई ओन, मैं अपनी मर्जी से जो है वो अल्लाह ताला खुश करूंगा क्योंकि मेरा भी तो अल्लाह है, सिर्फ तुम्हारा तो नहीं, अल्लाह सिर्फ तुम्हारा तो नहीं है, अल्लाह तो मेरा भी है, तो व्हाई शुड आई एस्क यू, मैं तुमसे क्यों पूछूं कि अल्लाह को कैसे राजी करना है, मैं खुद से फिगर आउट कर लूंगा भाई। अल्लाह ताला ने मेरे सर के अंदर भी एक दिमाग फिट किया है, ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरे सर में भी एक दिमाग फिट किया है, मैं उस दिमाग को इस्तेमाल करूंगा और मैं उसके जरिए से अल्लाह ताला को खुश कर लूंगा, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला तक पहुंच जाऊंगा, अल्लाह ताला की रजा हासिल कर लूंगा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की रजा नहीं हो नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या रास्ता पसंद फरमाया कि देखो तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी अकल से फिगर आउट करके कोई तरीका वजा कर लेना, ये मेरी रजा नहीं है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। बल्कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल क्या है कि तुमने अपनी अकल को इस्तेमाल करना तो है, ठीक है, तुमने अपनी अकल को इस्तेमाल करना तो है क्योंकि मैंने तुम्हें दी है ना, तो घास खाने के लिए तो नहीं दी है, ठीक है, मैंने तुम्हें अकल दी है तो मैंने अकल को जो है वो पतंगे उड़ाने के लिए तो नहीं दी है। अब क्योंकि हम लाहौर में हैं और बसंत जो है वो देख रहे हैं चारों तरफ तमाशे, ठीक है, तो इस वजह से पतंगों का जिक्र आज सुबह की क्लास में भी बहुत ज्यादा आया था और अभी भी आएगा शाम की क्लास में भी, ठीक है, तो मैंने तुम्हें अकल इसलिए तो नहीं दी है कि तुम जो है वो अकल को जो है वो पतंगे उड़ाने के लिए इस्तेमाल करो और फिर पतंगों के मांझे से जो है वो गला कटने के लिए तुम अपनी अकल से ये फैसला करो कि मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है वो रॉड लगा दो। अब सारी मोटरसाइकिलें जो है वो रॉड के साथ चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें अकल इसलिए दी थी, तो अकल तो मैंने तुम्हें दी है इस्तेमाल करने के लिए दी है, ठीक है, तो तुम अकल को इस्तेमाल करो लेकिन कहाँ तक इस्तेमाल करो ये चले आप बता दें। उन्होंने क्या जवाब लिखा था, एक्सेप्ट लास्ट चॉइस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज हिज मैसेंजर, ठीक है, तो अपनी अकल को इस्तेमाल उस हद तक करो कि तुम अल्लाह के रसूल तक पहुंच जाओ, तुम अल्लाह के रसूल को आइडेंटिफाई कर सको अपनी अकल को इस्तेमाल करके, को कौन है अल्लाह का रसूल, ठीक है ना, यहां तक के लिए तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो कि कौन है अल्लाह का रसूल, और फिर उसके बाद जो है ना तुम उसकी बात को मानो जो वो कह रहे हैं कि अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, ठीक है, तो अब उसकी बात मानो, तो वो तुम्हें बताएगा सुबुल सलाम क्या है, ठीक है, मेरी आवाज तुम तक नहीं आएगी, मेरी आवाज तुम तक नहीं आएगी, मैं अपना हाथ एक्सटेंड करके अर्श से लेकर के फर्श तक अपना हाथ एक्सटेंड करके तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें नहीं चलाऊंगा कि ये सीधा रास्ता है, बल्कि ये इल्म तुम्हें कौन अच्छा वो तो बाहर है चले कोई बात नहीं बच्चे तो हम बात करते रहेंगे अपनी, अच्छा तो ठीक है, तो ये जो है ना ये मेरा मेरी पसंद ये है कि तुम रसूल से पूछो कि तुम्हें क्या करना है और क्या सोचना है और क्या नहीं करना है और क्या नहीं सोचना है, रसूल तुम्हें बताएंगे, ठीक है, ये अल्लाह की रजा है, ठीक है। अब रसूल को प्रूफ करने के लिए वो हमने मौजजात दे दी अपने रसूल को, ठीक है, वो हमने अपने मौजजात दे दिए रसूल को, कमाल इल्मी भी दे दिया और कमाल अखलाकी भी दे दिया, ठीक है ना। अब तुम्हारी अकल जो है वो इस काबिल हमने बनाई थी कि तुम कमाल इल्म को एक्नॉलेज कर सको, तुम कमाल इल्म को रिकग्नाइज कर सको, उसको पहचान सको कि कमाल इल्म क्या चीज होती है। इतना मैंने तुम्हें अकल दे करके भेजा है दुनिया के अंदर। और कमाल अखलाक क्या चीज होती है, इतना मैंने तुम्हें अकल में सलाहियत दे करके भेजा है, ठीक है। तो यू बेटर यूज योर अकल, यू हैव टू यूज योर अकल टू एक्नॉलेज, टू रीच, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमाल इल्म एंड व्हाट इज कमाल अखलाक, ठीक है। तो तुम अपनी अकल को यहां के लिए इस्तेमाल करो, और फिर उसके बाद जो है ना, जब तुम वहां पहुंच जाओ कि मेरे ये अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि इनके पास कमाल इल्म भी है, इनके पास कमाल अखलाक भी है, अब तुम उनकी मानो, ये है अल्लाह ताला की रजा, ये है अल्लाह ताला की चॉइस, ठीक है। तो अब जब हम पतंगे उड़ाते हैं तो हमारा वक्त किधर लगता है, हमारा वक्त किन चीजों में लगता है, खराफात में लगता है। जब हम कबूतर उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं कुछ लोग, लेकिन मुगल दौर के, हमने आज मुगल दौर के भी इबरतें देखी हैं, लाहौर शहर में हम बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आए, ठीक है। ये इबरत के लिए आप शाही किला भी देखें, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने दौलत अता फरमाई थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अता फरमाई थी अल्लाह इन मुसलमानों को, कैसे कैसी शान व शौकत अता फरमाई थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी जो है ना, वो इतना माल लुटाया, पता नहीं किस किस वो गाइड बता रहा था कि असली सोने का पानी इस्तेमाल किया गया, असली सोना इस्तेमाल किया गया, असली जो है वो ये जवाहर इस्तेमाल किए गए इस शीश महल के अंदर, और फलानी जगह पर ये वाले याकूत और मरजान और पता नहीं क्या 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 अल्लाह ताला ने अता फरमाया, लेकिन कैसे फिर उसके बाद आसमान से उठा करके जमीन पे पटख दिया, ठीक है, जमीन पे पटख दिया, जिल्लत और रुसवाई का शिकार कर दिया, हत्ता के बेटों के सर काट काट करके उनके सामने पेश किए गए, राइट, थान के अंदर जिसमें रोटी सालन पेश किया जाता था ना उनको, उनमें उनके बेटों के सर काट करके पेश किए गए, ठीक है। तो मैं ही इज्जत देने वाला हूं जब तुम मेरी मान के चलते हो, मेरे रसूल की मान के चलते हो, और मैं ही तुम्हें जलील और रुसवा करने वाला हूं कि जब तुम अपनी अकल को जो है वो खराफात में इस्तेमाल करना शुरू कर दो और हकीकत तक पहुंचने के जुस्तजू में ना इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए हमें अकल इस्तेमाल अकल दी है, और अकल का इस्तेमाल यहीं तक है, लेकिन इसके बाद जो अल्लाह को राजी करने का तरीका है वो नबी से सीखना होगा। तो मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, ये करता है अल्लाह ताला नूर और किताबों मुबीन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को जो कि अल्लाह ताला की रजा के सामने अपने आप को सबमिट करते हैं, ठीक है। वंस दे रीच द ट्रूथ देन दे सबमिट देमसेल्व्स, दे डोंट डू डिनायल ऑफ द ट्रूथ, है ना, कि ट्रूथ भी सामने आ गया है लेकिन अभी भी जो है या तो खुल के मुखालफत कर रहे हैं या रास्ता बदल करके पतली गली से निकल रहे हैं, हालांकि ट्रुथ सामने मौजूद है लेकिन इधर से उधर इग्नोर, उधर इग्नोर, इधर उधर, इधर जा रहा, इधर जाना, बात नहीं करना, समझना नहीं, इल्म नहीं हासिल करना उनसे, बल्कि वक्त जाया करना, ठीक है। तो जो ऐसा नहीं करता बल्कि इत्तबा करता है तो उसको अल्लाह ताला सलामती की राहें पहुंचाते हैं, और मजीद क्या करते हैं, रुख व युखरिजुहुम मिन अज़ुलुमात इलन नूरी बि इज़्निही, अपने इजाज़ अपने हुक्म से, अपनी चाहत के साथ जो है वो उनको अंधेरों से निकाल करके नूर की तरफ लेकर के आते हैं, व यहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हैं, ठीक है। तो सुबुल सलाम जो है ये भी सलामती की राहें, ठीक है, कि भाई ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसे अखलाक इस्तेमाल करो, बीवी के साथ ऐसे रहो, बच्चों के साथ ऐसे रहो, माँ बाप के साथ ऐसे रहो, पड़ोसियों के साथ ऐसे रहो, और अपने पेट्स के साथ ऐसे रहो, अपने घर के जो है वो जो जो नबातात हैं उनके साथ ऐसे रहो, ये सुबुल सलाम हो गए। और इन सब का एक, अगर आप एक उसको सम अप करके इनको टोटल एक रास्ता कहें तो उसको फिर सिरात मुस्तकीम कह दिया, ठीक है। सिरात मुस्तकीम का ये भी बात हो चुकी है तर्जुमे के दौरान कि सिरात मुस्तकीम अलग से क्यों फरमाया, सुबुल सलाम के अंदर तो बात कवर हो गई सलामती के रास्ते, तो अब ये सिरात मुस्तकीम क्या बला है, रिपीटेशन की क्या जरूरत थी यहाँ पे, जब सुबुल सलाम की बात हो चुकी तो फिर सिरात मुस्तकीम रिपीट कर रहे हैं। कुरान मजीद में तो रिपीटेशन नहीं होती, विदाउट अ पर्पज रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है, या तो ताकीद करने के लिए रिपीटेशन होती है या फिर दूसरे मकसद होता है कि असल में मतलब कुछ और होता है। तो सिरात मुस्तकीम की बताई थी कि भाई ये इस्तेकामत वाला रास्ता है, यानी कि जब आप सुबुल सलाम की हिदायत आपको मिल जाती है ना, तो अब उसके ऊपर कायम रहने की तौफीक भी, कायम रहने की तौफीक भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। इस्तेकामत, सिरात मुस्तकीम का लफ्ज, जिस रास्ते के ऊपर फिर आप डोलते नहीं रहते हैं कि कभी इधर निकल गए कभी उधर निकल गए, बल्कि उसके ऊपर स्टैब्लिश भी रहते हैं। अच्छा, तो ये बात हुई कि एक रोशन चीज़ आई है और वह किताब वाज़े है कि उसके जरिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रज़ाए हक के तालिब हों सलामती की राहें बतलाते हैं, यानी जन्नत में जाने के तरीके, जो खास अकायद व आमाल हैं तालीम फरमाते हैं। ठीक है, अकायद क्या चीज़ होती हैं, सोच, सोच के जो अल्लाह ताला की तरफ से चोजन सोचे हैं उनको अकायद कहते हैं, चोजन सोचे अल्लाह ताला की, ठीक है, उनको अकायद कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला के बारे में ये सोचना अपने जहन के अंदर कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है, ये एक अकीदा हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जहन की सोच हो गई, ठीक है। उसी तरह अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको किसी की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है, हर कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, ये एक सोच है जहन की, ठीक है, तो इसको भी अकीदा कहा जाता है। और आमाल कि भाई ये पांच नमाजें, चार रकत जो है वो जोहर में, दो रकत जो है वो फजर में, और इस तरह से ये सब आमाल, बाकी सारे 2.5% जकात, रमजान मुबारक के 30 रोजे, ठीक है, हज जिंदगी में एक दफा वगैरह, तो ये सब तालीम फरमाते हैं, क्योंकि दर हकीकत मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है। तो ये सलामती के रास्ते हैं, ये खुद पूरी की पूरी सलामती नहीं है, क्योंकि पूरी सलामती जो है वो दुनिया में नहीं मिल सकती, यहाँ पर तो ज्यादा से ज्यादा सलामती तक पहुंचने के रास्ते ही मिल सकते हैं। तो मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है कि ना इसमें कोई कमी है और ना जवाल का खतरा, ठीक है। दुनिया में सलामती तो माशाल्लाह बहुत नेक अमाल करेंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वक्त जो है मौत तो आनी है, ठीक है, तो कितने ही नेक अमाल कर लें, कितने ही जो है वो अकायद दुरुस्त कर लें, मौत से बच सकता है कोई, कभी भी नहीं बच सकता, ठीक है। तो ना तो मौत से निजात है दुनिया के अंदर, और ना जो है वो दुनिया के अंदर किसी हादसा से निजात है, ये तो नहीं है कि नेक बंदा होगा तो उसको कोई हादसा पेश नहीं आ सकता, ठीक है। तो भाई मुकम्मल सलामती तो जन्नत ही में हो सकती है। तो सारी बात यहाँ पर फिर क्या हुई कि सबमिशन, ठीक है, कि ट्रुथ तक पहुंचने के लिए पहले अपनी अकल का इस्तेमाल, फजूल की चीजों में अपने वक्त को जाया ना करना, ताकि आप सही जगह पे पहुंच जाएं, इल्म के सोर्स तक पहुंच जाएं, और उसके बाद वंस यू हैव रीच द सोर्स नाउ सबमिट योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को झुकाओ वहां पे जाकर के इल्म हासिल करने के लिए, जैसे कि झुकाते हो दूसरों के सामने, उसी तरह यहाँ पे भी दीन के लिए भी झुकाओ अपने आप। और अब अल्लाह के रसूलों के वरसा कौन है, उन्हें अपनी अकल से ढूंढो फिर उनकी मानो, एग्जैक्टली, ठीक है, अल्लाह के रसूल कौन है, उनको ढूंढो अपनी अकल से, अकल को इस्तेमाल करो इस काम के लिए कि उनमें कमाले इल्म का वारिस कौन है, उनके अंदर कमाले अखलाक के वारिस कौन है, यूज योर ब्रेन्स टू रीच देम, ठीक है, और फिर उसके बाद उनकी मान, उसी को अंग्रेजी में सबमिट करना कह दिया। तो इनको फिर अल्लाह ताला जो है ना फिर लेके चलते हैं, और फिर युखरिजुहुम मिन अज़ुलुमाति इला नूर भी करते हैं, और उनको जो है वो यहदीहिम इला सिराति मुस्तकीम भी करते हैं। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, अल्लाह ताला से अगर हम हिदायत मांगे और मदद मांगे तो बज़ाहिर बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नजर आने वाली चीज़ अल्लाह ताला बहुत आसान फरमा देते हैं, ठीक है, लेकिन रज़ाए हक के तालिब हों, दुआ जो है ना ये तलब के बगैर नहीं मांगी जाती है, रट्टू तोते वाली जो जो दुआ होती है ना, ये बेतलबी की दुआ होती है, रट्टू तोते वाली दुआ, ये बेतलब इंसान जो है वो इस तरह की दुआ मांगता है, जो तलब वाला होता है वो तो दिल से मांगता है। क्या वो आखिरी बयान में, गाफिल के तूने दिल से पुकारा ही नहीं है, राइट? क्या प्यारा जुमला था उस नज़म का, कि वो जो तौबा किए बगैर गुजारा ही नहीं है। तो उसका दूसरा मिसरा था ना कि देता है वो सबको जवाब, राइट? तो गाफिल के तूने दिल से पुकारा ही नहीं है, तू अल्लाह को दिल से पुकारता ही नहीं है। तो तू तो यानी ऐसे पुकारते हैं हम अल्लाह ताला को कि जैसे कि नऊज बिल्ला हम अल्लाह ताला के साथ कोई कोई इंसल्ट का मामला कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्यों जवाब देगा, राइट? तो जो तलब के साथ फिर पुकारते हैं अल्लाह ताला के, फिर अल्लाह ताला ना उसको असबाब भी अता फरमाते हैं और असबाब पे चलने का तरीका भी जो है वो सिखलाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे चलाना है हमें, अल्लाह ताला हमें सिखलाते हैं कैसे चलना है। तो जो खास अकायद व अमाल है तालीम फरमाते हैं, तो क्योंकि दर हकीकत, अच्छा ये तो बात हो गई, तो और उनको अपनी तौफीक से कुफ्र व मासियत की तारीकियों से निकाल कर ईमान व ताअत के नूर की तरफ लेकर के आते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए फिर अल्लाह ताला असबाब इख्तियार इस्तेमाल फरमाते हैं, किसी के पास पहुंचा दिया, किसी अच्छी किताब की तरफ पहुंचा दिया, ये अल्लाह के करने के काम है भाई, अल्लाह करते हैं, अल्लाह नोज हाउ टू डू इट एंड वेन टू डू इट एंड हु टू डू इट विद, और उनको हमेशा राह रास्त पर कायम रखते हैं, यानी इस्तकामत की तौफीक अता फरमाते हैं। ये सब किन के साथ होता है, मन तबा रिजवानहू, ठीक है, ये उनके साथ अल्लाह ताला ये पूरा पैकेज, पूरी पैकेज डील करते हैं उनके साथ, बल्कि पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम जो है ना वो तो अल्लाह रहम करे, हमें बस हमें हिदायत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, दिल से हिदायत मांगनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बिला शुबा वो लोग काफिर हैं जो यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला ईसा मसीह इब्ने मरियम है। आप उनसे यूं पूछिए कि अगर ऐसा है तो बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम, जिनको तुम अल्लाह का ऐन समझते हो, यानी ऐन अल्लाह, ईसाइयों के तीन फिरके हमने पढ़े थे इसे पीछे, कि एक फिरका था जो कि ईसा इज इक्वल टू अल्लाह सुबहान व तआला, नाउज बिल्ला, ठीक है, कि अल्लाह और ईसा एक ही हैं, तो यहाँ पे उसी फिरके की बात स्पेसिफिकली हो रही है। तो जिनको तुम यू समझते हो ना इस तरह अल्लाह का ऐन समझते हो, और उनकी वालिदा हजरत मरियम को और जितने जमीन में आबाद हैं उन सबको मौत से हलाक करना चाहें, तो क्या कोई शख्स ऐसा है कि जो अल्लाह ताला से जरा भी उनको बचा सके? ठीक है, अल्लाह ताला का फैसला हो जाए तो कोई उनको बचा नहीं सकता, यानी इतनी बात को तो तुम भी मानते हो कि उनको हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है, तो जिस जात का हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो है ना जो कि खुद हो, खुद सब कुछ करने वाला हो। ठीक है, तो जो जिसको कोई दूसरा हलाक करने वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब देखिए मजे की बात यहाँ पर ये है कि जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने अपने कमाले, मतलब हमारे दौर के हिसाब से कमाले इल्म कहा जाए हजरत थानवी रहमतुल्लाह के पास भी, ठीक है, तो उन्होंने जो लिखा है ना कि इतनी बात को तो तुम भी मानते हो, तो हमें इस बात के ऊपर एतमाद है कि इसका मतलब क्या है कि जो ईसाई और यहूदी हैं तो वो इस बात को मानते हैं, या कम अज कम उस वक्त जो है उस जमाने में मानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हलाक कर सकता है। ठीक है, तो ये फिर क्या पॉइंट बना मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान, ये एक मुत्तफ़क़ुन अलैह नुक्ता बन गया। ठीक है, म्यूचुअली एग्रीड अपॉन पॉइंट बन गया कि वो भी इस बात को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हलाक कर सकते हैं, और हम भी इस बात को मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हलाक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मुत्तफ़क़ुन अलैह पॉइंट बन गया ना, तो अब जो है वो यहां से बात आगे बढ़ाए कि जब तुम मानते हो, हमसे भी एग्री, हमसे एग्री करते हो इस बात पर, तो फिर इसकी बुनियाद पर हम आगे अपनी ये दलील पेश करते हैं, अकली दलील पेश करते हैं कि जिसका, जिस जात का हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, ये किस किस्म का खुदा है कि जिसको कोई दूसरा आकर के मार दे, है ना भाई, ये किस किस्म का खुदा है जिसको कोई दूसरा आके मार दे? ठीक है, हम तो उस खुदा को नहीं मानते। ठीक है, उस खुदा से तो नाउज़ बिल्ला कोई दुनिया का हुक्मरान ही अच्छा हो गया कि जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है दूसरों से। ठीक है ना, ऐसा खुदा से तो, खुदा से तो अच्छा है कि भाई कोई इंसान ही जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो गया? हाँ मखा के खुदा बनाए हुए, ठीक है। तो देखें अल्लाह, यहाँ पे एक बात तो ये हो गई ना कि मुत्तफ़क़ुन अलैह पॉइंट तलाश करना होता है, फिर आगे बात करनी होती है, ठीक है। अगर मुत्तफ़क़ुन अलैह पॉइंट आप नहीं तलाश कर सकते ना, तो फिर उसके बाद बस दुआ करनी होती है, वो फिर आप बहस नहीं कर सकते किसी से, अगर मुत्तफ़क़ुन अलैह कोई पॉइंट नहीं है। फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गेट द मैसेज अक्रॉस, जस्ट गेट द मैसेज अक्रॉस कि दिस इज वॉट इज राइट, दिस इज वॉट इज रॉन्ग, ठीक है ना। बस मैंने बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। अगर आपने बाकायदा डिस्कशन करनी है ना, डायलॉग करना है ना, उसके लिए तो यू विल हैव टू फाइंड ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सम पॉइंट ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वरना उसके बगैर बिल्कुल फजूल है बहस करना, ठीक है। हम लोग बहुत फजूल में बहसें करते हैं ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कोई हमने तलाश करी नहीं होती है, ऐसी बहस शुरू कर देते हैं, तो उसमें फिर लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई फायदा हासिल नहीं होता है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग को या कॉमन पॉइंट को मालूम करना, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है असल में, ठीक है। थोड़ी सी फिक्र करनी पड़ती है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है कि अभी मेरे और उनके दरमियान क्या बात कॉमन है, क्या बात मेरे और उनके दरमियान जो है ना मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इसके लिए तो आपको कुछ पढ़ना लिखना पड़ेगा ना, वो हम करना नहीं चाहते, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इस वजह से हम फजूल की बहसें करते रहते हैं अगले बंदे से, तो कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि देखें, ये जो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, हालांकि दूसरी बातों को तो ये तस्लीम नहीं करते, तो इसको जो उन्होंने तस्लीम किया ना, तो ये उन्होंने कैसे तस्लीम कर लिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि देखें, ये जो एक एरर है ना, एरर ये अल्लाह ताला ने उनसे करवाया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनसे ये गलती करवाई है ताकि मुसलमान के लिए आसानी हो सके उनसे बात करना, उनसे डायलॉग करना एक मुसलमान के लिए आसान हो सके, और उनका जो केस है वो कमजोर हो सके, ठीक है ना। उनका जो केस है वो कमजोर हो सके। भाई ये भी तो हो सकता था ना कि वो इस बात को भी एग्री नहीं करते कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मार सकते हैं, ये भी तो हो सकता था ना, लेकिन अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं, ठीक है। उनके लिए भी हिदायत को एक्सेप्ट करना आसान बना दिया कि उनसे एक एक क्या कहते हैं उसको, एरर, स्लिप ऑफ द, क्या क्या दूसरा लफ्ज होगा इसके लिए प्रॉपर, जहन में जो टिप ऑफ द टंग में कुछ चीजें होती है, आती नहीं है, तो करवा दिया उनसे, ठीक है, नहीं ब्लंडर करवा दिया, हाँ ब्लंडर का लफ्ज जो है वो शायद मैं बोलना चाह रहा था, उनसे एक ब्लंडर करवा दिया, अब फंस गए, वो ब्लंडर हो गया, अब वो फंस गए, ठीक है। अब जो है ना वो आई माई शाएं तो करेंगे, आगे से कोई अकली दलील नहीं दे सकते, आए बाएं शाएं बेशक करेंगे, ठीक है। वो एक और लफ्ज हमने बच्चों की क्लास में इस्तेमाल किया था ना इसके लिए, बोंगियां मारना, बोंगियां मारेंगे फिर वो, लेकिन वो कोई प्रॉपर इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट पेश नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं पेश कर सकेंगे? बिकॉज अल्लाह मेड श्योर कि उनका केस वीक हो जाए, उनका केस वीक हो जाए, मुसलमान का केस स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो भाई देखें अल्लाह ताला जो है ना ये करता है सब कुछ, सही है। तो इतनी बात को तो तुम भी मानते हो कि उनको हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है। देखें हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ जो है ना ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं पढ़ रहे ना वाओ करने के लिए खाली, भाई ये तो कुरान में हिदायत नाम है ना हमारे लिए, तो हम भी इस बात को जाने के, देखें हमारा काम है अपना अपना काम मुकम्मल करना, बाकी अल्लाह ताला जिसको हिदायत दिलवाना चाहेंगे ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल को नरम कर देंगे, उसके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाएगा जिसके बाद जो है ना वो उसको कहीं वो भाग ही नहीं सकेगा, उसके लिए निकलने के रास्ते अल्लाह ताला बंद कर देंगे, ठीक है। या अल्लाह ताला जब हमें काफिर के ऊपर इंटेलेक्चुअल गलबा अता फरमाना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है कि काफिर से कोई ब्लंडर करवा दे, काफिर से कोई ब्लंडर करवा दे, ठीक है। फिजिकल गलबा तो हमारा उनके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल गलबा तो आ जाएगा ना उनके ऊपर, क्योंकि वो फिर बैकफुट पे आने पे मजबूर हो जाएंगे, आई बाई शाई करने पे मजबूर हो जाएंगे, बोंगियां मारने पे मजबूर हो जाएंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी लूज कर जाएंगे, अपना एज लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्लाह के करने के काम है, और हमारा अल्लाह ताला के ऊपर इतना भरोसा भी होना चाहिए और अल्लाह के बारे में इतना इल्म भी होना चाहिए। देखिए कुरान अजीम शान से हमें यह इल्म मिल रहा है कि देखें दिस इज हाउ अल्लाह डज हिज वर्क। ठीक है, तो जितना हम कुरान से जुड़ेंगे और कुरान को समझेंगे गहराई में जाकर के, उतना ज्यादा अल्लाह ताला की शान भी और अल्लाह ताला के अफआल और तरीके हमारे ऊपर खुलेंगे, और इससे फिर हमारा ईमान मजबूत होगा, तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद मजबूत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास रोक देते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ठीक है।